ऑस्ट्रेलिया में आरजी काम के लिए दिए जाने वाले वीजा सिस्टम, जिसे उर्फ आम में 457 वीजा कहा जाता है, उसमें तब्दीलियां की जा रही हैं और इन तब्दीलियों से उन लोगों पर असर पड़ेगा जो ऑस्ट्रेलिया में वर्किंग वीजा पर यहां आना चाहते हैं। इस सिलसिले में हमने बातचीत के लिए शकील अहमद साहब को यहां मधु किया है, जो माइग्रेशन लॉ एडवाइजर हैं। शकील साहब, पहले जरा अपना तारुफ कराइएगा।
मैं शकील अहमद, बेसिकली रनिंग मास्टर माइग्रेशन सर्विसेज एज अ माइग्रेशन रजिस्टर्ड कंसल्टेंट हेडिंग ऑस्ट्रेलिया माइग्रेशन नेटवर्क। तो इसमें जो आपने 457 का जो जिक्र किया है, ये एक बहुत ही क्रिटिकल वीजा है। कई सालों से फॉरेन वर्कर्स इस वीजे पे ऑस्ट्रेलिया आते रहे हैं और इसमें बड़े एम्प्लॉयर्स ने बेनिफिट लिया। इसके साथ साथ स्मॉल टू मीडियम रेंज के जो एम्प्लॉयर हैं, उन्होंने भी इससे बेनिफिट लिया। लेकिन इशू पैदा ये हुआ, दो तरह के इसमें इशूज हुए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ये मजबूरन एबॉलिश करना पड़ा और इसको रिप्लेस करना पड़ा एक और वीजे से विद स्ट्रिक्ट चेंजेस।
बताइएगा जरा, वो इश्यूज क्या थे 457 वीजाज में? कौन से ऐसे सुकम पाए गए जो जिस पे हुकूमत पे ये प्रेशर था कि इसमें तब्दीलियां की जाएं?
फॉरेन वर्कर्स के आने की वजह से जो लोकल थे, उनमें फ्रस्ट्रेशन थी कि हमारी जॉब जो है वो फॉरनर्स को दी जा रही है। जो बड़ा जो फैक्टर था वो ये था कि दिस वीजा वॉज बींग एब्यूज्ड, क्योंकि इसमें जैसे बड़े प्लेयर्स उन्होंने लेबर एग्रीमेंट के तहत एम्प्लॉयज यहाँ पर लाए, और इसमें ऐसे भी बिजनेसेस हैं जो स्मॉल टू मीडियम रेंज करते हैं और वहां उन्होंने भी इससे बहुत बेनिफिट उठाया। लेकिन इशू आया जब ये वीजा एब्यूज होना शुरू हुआ। दिस वीजा बिकेम ए कमोडिटी, ये वीजा बिकने लगा लाइक मिडिल ईस्ट की तरह, कि अगर कोई कुक है तो उसके रेट $40,000 लग गए, कोई डॉक्टर है तो उसके $80,000 का रेट लग गया उसका, कोई अगर रिटेल मैनेजर है तो उसके $35,000 का रेट लग गया। तो ये वीजा बिकने लगा। लोगों ने एम्प्लॉयज ने ये काम शुरू किया कि एक सोल ट्रेडर है, उसने कोई परचून की दुकान खोली, उसने उसके लिए एक बंदा मंगवा लिया रिटेल मैनेजर। कोई किसी ने एक कमरे का कैफे खोल लिया, रेस्टोरेंट खोल लिया, वहां उसके लिए उसने कुक और शेफ मंगाना शुरू कर दिए और उनसे पैसे लेके ही को सैलरी इशू करते रहे। तो जब वीजा सिस्टम इस तरह से अब्यूज होने लगे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट, ये जरूरी है कि वो इसको फिक्स करें सिस्टम को। तो 19th अप्रैल 2017 को गवर्नमेंट ने एक सर्जिकल ऑपरेशन किया और उन्होंने जो ऑक्यूपेशन लिस्ट थी उसमें से 216 ऑक्यूपेशन निकाल दिए, 59 जो है ना उन पर उन्होंने कंडीशंस लगा दी और 24 को उन्होंने रीजन तक महदूद कर दिया। अब ये जो उन्होंने दो लिस्टें हैं जो इवॉल्व की नई, शॉर्ट टर्म इसके ऑक्यूपेशन लिस्ट जिसे एसटीसॉल कहते हैं, दूसरा है मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्किल्स लिस्ट। ये डिटरमिन करती है कि वीजे की वैलिडिटी कितनी होगी। जो लोग स्ट्रेटेजिक एसटीसॉल पर आते हैं उनके लिए वीजा मिलेगा 2 साल का, लेकिन वो पीआर स्ट्रीम में वो ट्रांजिशन में नहीं जा सकते। जबकि जिनका ऑक्यूपेशन लॉन्ग टर्म यानी कि एमएलटी एसएसएल पर होगा, दे कैन बी ग्रांटेड अ वीजा अप टू 4 years और वो 3 साल 457 पे रहने के बाद जा सकते हैं परमानेंट स्ट्रीम के अंदर। लेकिन मार्च में एक्चुअली दिस 457 विल बी फुल्ली अबॉलिश्ड और जो नया जो वीजा सिस्टम है टेम्परेरी शॉर्टेज स्किल वीजा टीएसएस के नाम से, दैट विल किक इन फ्रॉम मार्च 2018। और उसके साइड बाय साइड गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट में एट टाइम डिस्कस कर रही है न्यू रेगुलेशंस, जिसमें सबसे बड़ा जो वो चेंज होने जा रहा है वो है कि 2 साल की वर्क एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड है टू गेट इन टू दिस टेम्परेरी वर्क वीजा। इसके साथ जो मैंडेटरी पुलिस क्लियरेंस आपके लिए है, इससे पहले जो लेबर मार्केट टेस्टिंग जो है वो स्किल लेवल 1 और 2 के लिए नहीं होती थी, अब इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्किल लेवल्स हर ऑक्यूपेशन की जो है ना वो लेबर मार्केट टेस्टिंग होगी।
मेरे ख्याल में यही वो पॉइंट है जिसके ऊपर यहाँ के लोकल काम करने वाले हैं, उनको इतराज था कि यहाँ तलाश नहीं किया जाता किसी को और उससे उसके बजाय अपने पसंदीदा अफराद को गैर ममालिक से बुला लिया जाता इस वीजे की आड़ में। इसका ये मिसयूज चल रहा था,
इसका अब्यूज था कि लोग अपने रिश्तेदारों को इसमें बुलाते थे, दोस्तों को इसमें बुलाते थे। अब जो नए जो रूल्स आ रहे हैं दैट विल स्ट्रीमलाइन द होल प्रोसेस, की अब वो चीजें जो लूप हो रहे हैं वो ब्लॉक किए जाए ताकि जो लेबर जो लोकल मार्केट है उसको टेस्ट किया जाए, वहां से अगर उनको नहीं मिलता, और देट शुड बी अ जेन्युइन एफर्ट कि आप देख रहे हैं लोकल मार्केट में वो लोग हैं भी या नहीं, आप छुप के आपने गमट्री में ऐड लगा दिया और उस बेसिस पे आपने एप्लीकेशन डाल दी कि हमें एमएलए मिला नहीं। लेकिन आप जब प्रॉपर ऐड डालते हैं, उसको एडवर्टाइज करते हैं, उसको पे करते हैं, तो फिर इट बिकम्स अब मच क्लियरर कि भाई आप जेन्युइन एफर्ट दे रहे हैं उसके अंदर। और इसके साथ साथ जो वो टेक, एक और इन्होंने फंड जो है वो पहले था टेक ट्रेनिंग बेंच मार्क जिसमें 1-2% ऑफ दी लेते थे वो पेरोल का, ताकि स्किल किया जाए लोकल्स को अपने रेस करने के लिए अपने पोटेंशियल को। अब उसको वो रिप्लेस कर रहे हैं, वो ला रहे हैं स्किलिंग ऑस्ट्रेलियन फंड्स, जिसके तहत 3,000 होगा 10 मिलियन से कम टर्नओवर वालों के लिए पर नॉमिनेशन और 10 मिलियन से ऊपर के लिए 5,000। बेसिकली ये स्पॉन्सर की जिम्मेदारी है, जो बिजनेस का स्पॉन्सर है, कि वो गवर्नमेंट के खजाने में ये पैसे डाले। यानी कि आपने एक कोई कुक रखा फॉर एग्जाम्पल, तो आप 3,000 अगर आपका टर्नओवर 10 मिलियन से नीचे है तो वो आप गवर्नमेंट को देंगे। दैट विल बी यूज टूवर्ड्स द ट्रेनिंग ऑफ द लोकल्स, ताकि लोकल्स की जो है ना वो स्किल्स को डेवलप किया जाए। अब गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के हिसाब से उस ट्रेनिंग को वो कमीशन करती है इन रीजन अर्बन एरियाज। साथ साथ जो एक बड़ा जो ड्रॉबैक था वो ये क्या कि ये अंडर पे करते थे लोगों को टैक्स 457 पे, जिसके लिए अब टैक्स फाइल नंबर कलेक्ट कर रही है गवर्नमेंट। इसके दो पर्पज हैं, एक तो ये इंश्योर करेंगे कि लोग अंडर पे ना हो, ये लूप होल ब्लॉक किया जाए, दूसरा ये कि टैक्स की कंप्लायंस भी हो, गवर्नमेंट को टैक्स भी प्रॉपर जा रहा हो इसके अंदर। और ऑन टॉप ऑफ दैट देयर आर मोर स्ट्रिक्ट कंडीशंस आर कमिंग टू द स्पॉन्सर्स, कि अगर वो लेबर जो कॉन्ट्रैक्ट जो कर रहे हैं उसमें अगर वो ब्रीच करते हैं तो वो उसको सैंक्शन किया जाए और उनको पब्लिसाइज किया जाए फॉर द अवेयरनेस ऑफ पब्लिक के इनसे होशियार बाश रहे।
अब मैं एक आम आदमी की हैसियत से अगर आपसे ये सवाल पूछूं कि एक आम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहता है और वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में वर्किंग वीजा के ऊपर आना चाहता है, कहाँ से वो शुरू करे?
बेसिकली इसमें दो स्ट्रीम्स हैं, एक तो टेम्परेरी है और दूसरा है परमानेंट। इसमें जो इशू है, आपको 186 और 187 में स्पॉन्सर चाहिए, ठीक है, और स्पॉन्सर के बगैर आपको जब तक नॉमिनेशन नहीं होगी आप इस जॉब पर नहीं आ सकते।
यानी वहां से वो अप्लाई नहीं कर सकते
unless or until they have got a sponsor. अगर वो स्पॉन्सर हो तो वो कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको नॉमिनेट करने के लिए कोई एक बिजनेस या कंपनी चाहिए इफ दे आर कमिंग डायरेक्ट।
तो वहाँ बैठ के स्पॉन्सर किस तरह ढूंढ सकते हैं?
बहुत सारे जैसे जर्नल्स हैं मीडिया में जहाँ से आप देखते हैं कि मुख्तलिफ एडवर्टाइज कर रही हैं कंपनीज और बिजनेसेस, तो वहाँ पर देख के वो डायरेक्ट उनको अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से वो उनको अगर नॉमिनेशन मिल जाती है तो दे कैन लॉन्च देयर एप्लीकेशन फॉर द सेम पर्पस राइट फ्रॉम नॉमिनेशन टू द एप्लीकेशन।
यानी ऑस्ट्रेलिया में जो जॉब सीकर्स की वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर जो
मीडियम्स हैं
जी उनपे एडवर्टाइज होती हैं ये जॉब्स, यहाँ से तमाम क्लियरेंस हो चुका है इसलिए ये बाहर से मांगी जा रही हैं।
लेकिन इसमें एक चीज का बड़ा ख्याल रखता है, कुछ ऐसे स्कैम्स हैं कि यहाँ पर जो कुछ रैकेट्स हैं ऐसे जो ये वेबसाइट्स के ऊपर डबी वेबसाइट पर बना के ये जॉब्स दे देते हैं और उसके बाद वंस दे कम इनटू द ट्रैप तो उसके बाद वो उस 50-60,000 डॉलर उनसे लेते हैं और उनके लिए कोई ना कोई बारगेन करते हैं किसी रीजन में या कहीं पर।
यानी वहाँ पाकिस्तान में या गैर ममालिक में रहने वालों को लिए बहुत जरूरी है कि वो वेरीफाई कर लें कि कोई भी पोजीशन अगर एडवर्टाइज है किसी वेबसाइट के ऊपर जो क्लेम कर रही है कि ऑस्ट्रेलिया में वर्किंग वीजा उनको दिया जा रहा है, या अखबारात में भी शायद इस तरह के इश्तेहारात वहाँ छपते हैं,
मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड और उस पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस वक्त। वो नेशनैलिटीज जो है ना सिर्फ मीडिया को इस्तेमाल कर रही है बल्कि जो आपका जो वेब मीडिया है उसको भी अब्यूज कर रही है टू गिव अ रॉन्ग इम्प्रेशन टू द पब्लिक ओवरसीज कि यहाँ पर बड़े धन लुट रहे हैं यहाँ पर। तो वो 457 लोगों ने कहा कि बंद हो गया इसका हम कोई और जुगाड़ निकाल लेंगे, तो इट गोज विद द मेंटेलिटी। तो मेंटेलिटी वो जहाँ होगी तो गवर्नमेंट को टाइम एंड अगेन एक्शन उठाना पड़ेगा उसके लिए, ना सिर्फ जॉब सीकर बल्कि जो जो माइग्रेशन कंसल्टेंट है ये सब मिलके बेसिकली इस इंडस्ट्री को प्रॉस्पेरसली और इंटेग्रिटी के साथ चला सकते हैं।
कोई एक आम आदमी पाकिस्तानी वहां से जो अप्लाई कर रहा हो उसको एक जॉब के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट नजर आया हो उसको कहां से वो वेरीफाई कर सकता है? क्या ऑस्ट्रेलियन कॉन्सुलेट जनरल उसको वहां के या हाई कमीशन उसको वेरीफाई कर सकता है कि हाँ ये जेन्युइन है?
आई डोंट थिंक हाई कमीशन के पास ये कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म है, लेकिन वैसे जो बेसिकली मीडिया इतना ओपन है कि उसमें बहुत ज्यादा मुश्किल है आपके लिए ऑथेंटिकेट करना वेब के ऊपर स्पेशली, आप उसको पुलिस नहीं कर सकते उस उन चीजों को। लेकिन जाहिर सी बात है अगर आपका कोई दोस्त है कोई जानने वाला है तो आप उसको ईमेल के जरिए आप क्रेडेंशियल्स उसके मांगे उसकी जरा तमाम किस कंपनी में जॉब है कहाँ है कैसे पैसे मिले। अगर कोई आपको ये चीजें और ईमेल देने से इजतनाब करता है, इन राइटिंग मांगेंगे, अगर वो कंपनी जेन्युइन है, अगर उसके पास प्रॉपर जॉब्स हैं और उसके पास वो चीजें हैं, तो वो तमाम प्रोवाइड करेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में कोई वो सिस्टम कोई करप्ट नहीं है ये।
और अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में उनका जानने वाला मौजूद हो तो उनसे भी वेरीफाई करें, और इसकी तहकीकात करने के और बहुत से तरीके हो सकते हैं कि आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उस कंपनी का देख लें, को ऑथेंटिकेट कर लें वहां से।
ट्रेनिंग की है, एग्जिस्टिंग जो आपके पास स्टाफ है फॉर एग्जांपल, आपका अपना इतना टर्नओवर, आपके फाइनेंशियल क्रेडेंशियल इतने होने चाहिए विच कैन जस्टिफाई कि आप जो है आने वाले को पैसे दे सकते हैं।
अफोर्ड कर
सकते आपका
हैं।
मुनाफा $25,000 है, आप कहते हैं 80,000 का बंदा मैं लाऊंगा, तो 25,000 का जो टोटल प्रॉफिट है आप उसको 80,000 तनखा कहाँ से देंगे? तो ये तमाम चीजें जो है ना, यू हैव टू लुक एट इट कि आपको जस्टिफाई करना है।
ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत मार्च से 457 वर्किंग वीजा खत्म करके उसकी जगह ऑस्ट्रेलिया में आरजी काम के लिए नए वीजा सिस्टम को मुतारिफ करवा रही है। इसी मौजू पर आप माइग्रेशन लॉ एडवाइजर शकील अहमद से हमारी बातचीत सुन रहे थे।